चिम्पन खाट पर चक्की के पास बैठ गया। चक्की ने देखा कि पति में पहली जैसी ताकत और फुर्ती अब नहीं रही। चिम्पन ने उस दिन समुद्र में जो घटना घटी थी उसे कह सुनाई। उसने कहा, मेरे पैर ढीले पड़ गए। पति से समुद्र में कोई दुर्घटना हो सकती है, यह ख्याल चक्की को कभी नहीं हुआ था। आज वह भी हो गया, आगे भी कुछ हो सकता है। निस्सहाय भाव से चिम्पन ने पूछा, मैं क्या करूं चक्की? वह चक्की से नहीं तो फिर किससे यह सवाल करता? जवाब देने का अधिकार भी और किसको था? उसके जीवन की व्यवस्था और सफलता के लिए चक्की एक अविभाज्य अंग जो थी, अब उसे खाट की शरण लेनी पड़ी है। उसके साथ ही चिम्पन का सब तेज भी समाप्त सा हो गया। वह एक हारे हुए व्यक्ति की भांत सिकुड़ कर खाट पर बैठा था। चक्की ने चिम्पन का हाथ छाती पर रख कर उसे दबाते हुए पूछा, मैं मर जाऊंगी तो क्या करोगे? चिम्पन रो पड़ा, ऐसी बात ना कह चक्की, मैं क्या मरूंगा? चिम्पन के हाथ पर चक्की की पकड़ कस गई। चक्की की छाती पर चिम्पन का हाथ पड़ते ही छाती धड़कन की तेजी से उसको अपना हाथ हिलता सा लगा। चक्की ने चिम्पन पर अपनी नज़र गड़ाते हुए कहा, किसी दूसरी से शादी कर लेना। इतना कह चुकने पर चक्की का शरीर कांपने लगा और हाथ पांव ऐंठने लगे। छाती की धड़कन भी धीमी पड़ती जैसी मालूम हुई। चक्की की नज़र चिम्पन के चेहरे पर गड़ी थी। चिम्पन ने पूछा, क्या कहा तूने? दूसरी शादी करने के लिए? कोई जवाब नहीं मिला। चक्की को मालूम था कि जीवन में आदमी को एक साथी की ज़रूरत होती है। उसके लिए उसने एक रास्ता भी सुझा दिया। चिम्पन ने तब तक इस तरह की बात के बारे में नहीं सोचा था। तू बोलती क्यों नहीं? चक्की की आंखें पथराने लगी। चिम्पन डर गया। उसने चिल्लाकर चक्की को पुकारा, चक्की चक्की। चक्की निश्चल थी। हाय, तू चली गई री? चिम्पन चक्की की देह पर गिर गया। उस समय भी चक्की की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। भाग 14। पंचमी फूट फूट कर रो रही थी। नलम्मा उसे शांत कर रही थी। चक्की पंचमी का भार नलम्मा को सौंप गई थी। नलम्मा ने भी उसके 4 के बदले 5 बच्चे हैं ऐसा मान लिया। लेकिन इससे पंचमी को तसल्ली नहीं हो सकती थी। अच्छन और अन्य साथियों ने मिलकर चिम्पन को चक्की के शरीर से अलग किया और बाद में जो जो करना था उसका प्रबंध किया। घटवार को खबर दी गई, वह आ गया। करतम्मा को खबर देने की बात उठाई गई। जब वह बात शोकातुर चिम्पन के कान में पड़ी तब तुरंत उसने गरज कर कहा, नहीं, उसे खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिम्पन के विचार में करतम्मा ही चक्की की अकाल मृत्यु का कारण थी। सब लोग थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध हो गए। चिम्पन के इस निश्चय के न्याय के बारे में सब सोचते ही होंगे। घटवार की राय की प्रतीक्षा थी। घटवार ने कहा, माँ को बेहोश हालत में पड़ी देखकर ही न वह गई थी? सब त्याग कर ही वह गई ना? जाने दो। पंचमी तब भी अपने दीदिया को पुकारती रही थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दाह संस्कार की तैयारियां होने लगी। गैर धर्मी परी थोड़ी दूर पर खड़ा रहा। करुतम्मा के बिना ही दाह संस्कार हो रहा था, इससे उसे दुख हुआ। लेकिन वह इस संबंध में कुछ कर भी नहीं सकता था। करुतम्मा को कितना दुख हो सकता है? आगे कभी मिलने पर वह उससे पूछ सकती है और कह सकती है, मोतलाली, तुमने भी तो खबर नहीं दी। इतना ही नहीं, चक्की भी उसे माफ नहीं करेगी। परी को लगा कि इस समय उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करे यह स्पष्ट नहीं था। वह करतम्मा का भाई बन गया था, उसे अपनी बहन बना लिया था। अब भाई के तौर पर उसे जीवन बिताना था। उस रात को परी को नींद नहीं आई। रात काफी बीत जाने पर वह उठकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह झोपड़ी को बंद करके निकल पड़ा। वह आगे बढ़ता गया। समुद्र के किनारे की हवा मानो कुछ गुनगुना रही थी। तरंगे भी मानो कुछ पूछ रही थी, कहाँ जा रहा है? त्रिकुण ने पूछा, क्यों? करतम्मा को उसकी माँ के मरने की खबर देने? इसके लिए तुम्हें क्या अधिकार है? यदि कोई यह सवाल पूछ बैठे तो क्या उत्तर देगा? करतम्मा से वह जब मिलेगा तब वह क्या कहेगा? इस तरह के प्रश्न उसकी गति को रोकने वाले प्रश्न थे। फिर भी वह बढ़ता गया। पर वह उसका भाई है, उसकी माँ ने उसे उसका भाई बना दिया है। लेकिन क्या वह बहन बनेगी? परी यदि करुतम्मा से जाकर मिले तो उस मिलन का नतीजा क्या होगा? इसके बारे में उसने सोचा है? खूब भोर के समय वह त्रिकुन्नपुषा तट पर पहुंचा। नाव पर जाने के लिए निकलने वाले एक मल्लाह को उसने देखा। परी ने उससे पलनी के घर का पता पूछा। चाकरा के समय वह आदमी निरकुन्नम तट पर गया था। उसने परी को पहचान लिया। उसने पूछा, छोटे मोतलाली, पलनी को क्यों खोजते हो? परी जरा घबरा गया। उसने कहा, पलनी की स्त्री की माँ मर गई है। कोच्चू नाथन के लिए यह एक समाचार था। वह चैम्पन और चक्की दोनों को जानता था। उसने चक्की की प्रशंसा की, लेकिन वह एक गड़बड़ में डालने वाला सवाल पूछ बैठा। मरने की खबर लेकर मोतलाली तुम कैसे आए? वहाँ कोई मल्लाह उन्हें नहीं मिला क्या? यह सवाल परी के मन में भी उठा था और उसने वह जवाब भी सोचा था। लोगों ने पलनी और उसकी पत्नी को खबर न देने का ही निश्चय किया है, इसलिए मैं चला आया। चक्की के मरने के बाद वहाँ का समाचार परी ने कह सुनाया। तब भी कोचुनाथन ने सवाल उठाया, उसके लिए आधी रात के समय ही मोतलाली क्यों निकल पड़े? इसका जवाब उसे भाई बनाने वाली बात थी, लेकिन वह कारण बताने लगता तो उसके पीछे की कहानी भी कहानी पड़ती। एक मुसलमान कैसे एक मलाहिन का भाई बन गया? माँ ने क्यों उसे भाई बना दिया? यह सब बताना पड़ता। उपयुक्त जवाब न पाकर वह परेशान हुआ। आखिर उसने एक गोल मटोल जवाब दिया कि लोगों की हृदयहीनता देखकर उसे बहुत दुख हुआ, इसलिए वह चल पड़ा। पता नहीं इस जवाब से कोचुनाथन को संतोष हुआ कि नहीं। उसने परी को पलनी का घर बता दिया। करुतम्मा से क्या कहे? सीधे खबर दे देना ठीक है? उसे कैसे समझाया जाए? नावें समुद्र में उतर गई थीं। पलनी के घर के सामने आकर परी खड़ा हो गया। वह छोटा घर शांत और निशब्द था। परी का कंठ सूख गया। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर अनजाने करुतमा शब्द उसके मुंह से निकल गया। कोई जवाब नहीं मिला। परी ने दोबारा पुकारा। भीतर से आवाज आई, कौन है? करुतम्मा ने परी की आवाज पहचान ली। मैं हूँ करुतम्मा। मैं माने? मुझे पहचाना नहीं, कौन हो? मैं हूँ परी, परी। फिर एक लंबी निस्तब्धता रही। परी ने कहा, एक बड़ी बात कहनी है करुतम्मा। रुलाई की आवाज में भीतर से जवाब आया, वहां से चले जाने पर भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं देखना नहीं चाहती। वह रो रही थी। उसके शब्द परी के कलेजे में चुभ गए। उसने ठीक ही कहा, वह अपने बचाव की खोज में थी। वह उसके चले आने पर भी उसे चैन से नहीं रहने देता। बिना कुछ कहे ही उसने लौट जाने की बात सोची। फिर सोचा, जो बात कहनी है बाहर ही से क्यों न कहकर चला जाए? लेकिन एकाएक कठोर होकर वह कैसे कहे? परी ने दरवाजा खोलने की प्रार्थना की। उसने पूछा, कौतम्मा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? अपने उमड़ते गहरे भावों को फूट काट कर दबाते हुए भीतर से ही उसने कहा, जानती हूँ। तब बाहर आने से क्यों डरती हो? इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसने आगे कहा, मैं अब भी वही पुराना परी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति के साथ रहती हो। निसहाय होकर गौतमा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। परी को कहीं से हिम्मत मिली। उसने कहा, ऐसा मत कहो गौतमा, हमें आगे भी मिलते रहना है, एक दूसरे से आमने सामने होकर बात भी करनी है। बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह समुद्र में गया है, तूफान और आंधी वाले समुद्र में। फिर निस्तब्धता छा गई। परी ने फिर पुकारा, करुतम्मा। करुतम्मा ने लाचारी से जवाब दिया, क्या है? मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? उस गहरे संबंध का विच्छेद न करके उसे एक नए रूप में प्रकट करना संभव हो गया। करुतम्मा कुछ आश्वस्त हुई। परी ने कहा, हाँ बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सगा भाई नहीं है ना? नहीं। तो तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है? तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारा भाई होकर तुम्हारी देखभाल करूँ। मेरी माँ? हाँ हाँ, दरवाज़ा खोलो, सब बातें सुना दूँ। गौतम्मा ने भीतर बत्ती जलाई और दरवाज़ा खोल दिया। कैसे वह बात कहे, लेकिन निष्ठुरता के साथ बात निकल गई। तुम्हारी माँ मर गई। करुतम्मा सुनते ही धाड़ मार कर रोने लगी। पड़ोस की स्त्रियाँ आ गईं। तब तक परी वहाँ से चला गया था। पड़ोसिनों ने करुतम्मा को शांत करने की कोशिश की। उसकी माँ के मरने की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उस दुख में भी करुतम्मा ने यह नहीं बताया कि किसने खबर दी है। स्त्रियों ने अंदाज लगाया कि उसने सपना देखा है। काफ़ी देर तक अस्त्रपात करने के बाद उसके मन में कई विचार उठे। उस खबर पर विश्वास किया जा सकता है? उसे लगा कि कहीं वह खबर एक निराश प्रेमी की द्रोह बुद्धि का फल तो नहीं है। यदि माँ सचमुच मर गई है तो खबर देने के लिए कोई नहीं आएगा क्या? पति समुद्र में गया था, लौटने पर उसे खाना देना था। पत्नी की कर्तव्य भावना ने उसे घर के कामकाज में फंसा दिया। किसी तरह रोज की तरह उसने भात तरकारी तैयार की। वह एक एक क्षण इस प्रतीक्षा में रही कि कोई खबर लेकर आएगा। पलनी जरा पहले ही लौट आया। फूट फूट कर रोती ही करुतम्मा ने कहा, मेरी माँ मर गई। पलनी ने अनसुनी कर दी। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई पड़ी। करुतम्मा रो रही थी। मैंने अपनी माँ को मार डाला। जरा भी सहानुभूति प्रकट किए बिना पलनी ने पूछा, खबर कौन लाया है? क्या जवाब दे? करुतम्मा घबरा सी गई। पलनी गौर से उसे देख रहा था। आखिर करुतम्मा ने कहा, वह छोटा मोतलाली। तब वह कहाँ है? खबर देने के बाद वह दिखाई नहीं पड़ा है। पलनी की उस गंभीरता का क्या कारण था? परी का आना या रिवाज के मुताबिक खबर न मिलना? पलनी ने पूछा, क्या उस मुसलमान को तेरे बाप ने भेजा था? करुतम्मा इसका जवाब नहीं दे सकी। पलनी ने आगे पूछा, यह खबर भेजने के लिए क्या उन्हें उस तट पर कोई मल्लाह नहीं मिला? करुतम्मा इसका भी क्या जवाब देती? इसी मौके पर छुरा भोंक कर कायदे बेकायदे की बात उठानी थी। पलनी के मन में किसी संदेह ने जगह कर ली थी। क्या संदेह था करुतम्मा को मालूम नहीं हुआ। उसे सिर्फ एक बात कहनी थी, हम लोग चलें? कहाँ? निरकुन्नम तट पर। पलनी अपना होठ एक ओर खींचकर जरा हंस दिया। उसका अर्थ था कि वह जाने के लिए तैयार नहीं है। करुतम्मा ने कहा, मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया है, मर गई है। इस तर्क का पलनी पर कोई असर नहीं हुआ। करुतम्मा ने कहा कि उसकी माँ ने एक माँ की तरह पलनी से प्यार किया था। माँ ने कोई गलती नहीं की है, गलती हुई है तो उसी से हुई है। शादी के दिन माँ ने ही उसे यहाँ आने को कहा था और उसी के कहने से वह चली आई। उसने आगे कहा, समुद्र माता की कसम, मैं जब आने में हिचक रही थी तब माँ ने ही जोर देकर मुझे आने को कहा था। हम जरा जाकर वहाँ देख आए। गौतम्मा पलनी का पैर पकड़कर रोने लगी, लेकिन वह पत्थर की मूर्ति की तरह अचल रहा। माँ कैसी होती है, यह चक्की ने ही पलनी को दिखा दिया था, वही चक्की मर गई है। उसकी मृत्यु का पलनी पर असर नहीं होगा, यह कैसे हो सकता था, उसने अपने आप बोलते हुए कहा। सबने मिलकर मुझे किनारे पहुंचा दिया। गौतम्मा ने पूछा, नीरकुंडम जाने के लिए ना? ऐसा ही कह रहे थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? थोड़ी देर बाद पलनी ने कहा, उसको आते हुए कुचुनाथन भैया ने देखा था, वह पप्पू तट के लोगों के बीच अपयश की बातें फैलाता ही रहता है। जब जब कहते कहते उसका गला रुंध गया। गला साफ करके वह फिर बोला, वे सब बाल बच्चे वाले हैं, इसलिए मुझे नाव पर से उतार दिया। करतम्मा को सब बातें समझ में आ गई। उस मौके पर यह भी हो गया। करुकम्मा को सिर्फ एक ही सवाल करना था। उसने पूछा, मुझ पर संदेह करते हो? वह न ना कह सकता था न हाँ। उसने पूछा, वह मुसलमान आकर खबर देने के बाद फांसी लगाने के लिए कहाँ चला गया? उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। वह क्यों अपने को यहाँ घसीट लाया? सब कुछ कह डालने का वह मौका था। बिना कुछ छिपाए सब बात बताई जा सकती थी, लेकिन करुतम्मा को कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। पलनी ने पूछा, उसने आकर क्या कहा? कि माँ मर गई है? वह उस छोटे परिवार के भविष्य का निर्णय करने वाला क्षण था। उस समय समुद्र में उस खबर के बारे में चर्चा हो रही थी। बुढ़िया की मृत्यु की बात सच्ची हो सकती थी। चक्की के बेहोश होकर गिर जाने की बात सबको मालूम ही थी। शायद वह फिर उठेगी नहीं, यह भी सभी ने अंदाज लगाया था। लेकिन मरने की खबर देने के लिए एक मुसलमान छोकरे के आने की क्या जरूरत थी? कोचुनाथन ने कहा, मेरे पूछने पर वह घबरा गया था। पप्पू को और भी बातें सुनानी थी। उसने कहा कि नीरकुंडम तट पर करुतम्मा और वह मुसलमान रात दिन साथ साथ खेलते और दौड़ते फिरते थे। उसने कहा, रात को वह बैठकर गाता था और यह निकलकर मिलने जाती थी, इसलिए ना शादी के समय मैंने झगड़ा खड़ा किया था। पप्पू को एक जीत जैसा अनुभव हुआ। सबको एक बात का दुख था, पलनी बेचारा एक शुद्ध आदमी है, उसे एक ऐसी स्त्री मिली, इसका सबको दुख था। एक ने पूछा, तब उसे नाव पर कैसे ले जाएंगे? इस सवाल का मतलब सब जानते थे। सबने समझाया कि पलनी का घर शुद्ध नहीं है, उस स्थिति में पलनी अगर नाव पर आवे तो कभी भी संकट उपस्थित हो सकता है। वेलायुधन ने पूछा, उसका घर शुद्ध नहीं है, यह किसने कहा है? आंडी ने भी वेलायुधन का पक्ष लिया और बात उठाने वाले कुमारन से पूछा, क्यों रे, तू निश्चित रूप से कह सकता है उसका घर शुद्ध नहीं है? यह निश्चित रूप से यहाँ कौन कह सकता है? यहाँ तक कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। पलनी का घर शुद्ध है, इसका विश्वास किया जा सकता था, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। फिर भी मामूली तौर पर एक संदेह सबको था। उस दिन पलनी इसी कारण नाव को बीच समुद्र में नहीं ले गया था कि उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। पप्पू जो कहानी फैलाता रहता है उससे भी उसके मन में तकलीफ है, फिर भी लड़की अच्छी है, यह कहने वाले भी थे। कुमारन को छोड़कर बाकी सब पलनी के घर को पवित्र मानने के लिए तैयार थे। कुमारन ने एक सवाल उठाया, एक मल्लाह मरने की खबर देने के लिए एक मुसलमान को ही भेजेगा क्या? तिस पर रात के समय वह क्यों आया? इसका जवाब कौन दे सकता था? सब दृश्य से देखने पर एक संदेह बना रह गया, लेकिन पलनी से सबको सहानुभूति थी। पलनी के घर में भी बातें अनिश्चित थीं। गौतम ने एक पीड़ित शोकातुर हृदय के तौर पर एक पत्नी के अधिकार के साथ नहीं विनती की कि उसे माँ का सौ ही अंतिम बार देखाने के लिए जाने दिया जाए, लेकिन परी ने कुछ नहीं कहा। गौतम ने पूछा, मुझ पर विश्वास कर सकते हो? विश्वास करूँगा ही, लेकिन वह कुछ बातें जानना चाहता था। और करतुमा बिना कुछ छिपाए सब कुछ कह डालने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय उसमें कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। उसके लिए वह समय बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन पलनी उसकी गुरुता नहीं समझ सकता था। उसकी ही माँ की नहीं, किसी की भी माँ की मृत्यु की गुरुता वह नहीं समझ सकता था। गौतम्मा निरुपाय होकर रोई। एक समाधान उसके मन में आया, उसे अकेले ही जाने दे, वह उसी दिन लौट आएगी। पलनी ने इसका सुझाव भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। गौतम्मा के मन में यह विचार भी आया कि पति की उपेक्षा करके ही वह क्यों न चली जाए, लेकिन इसका मतलब था कि लौट कर नहीं आना होगा। नहीं, इसके लिए वह तैयार नहीं थी। उसने एक मल्लाहिन होकर जन्म लिया है, वैसे ही उसे मरना भी है। उसकी माँ की भी वही इच्छा थी, वह पिता के ही पैरों से लिपट कर अपनी जीवन लीला समाप्त करेगी। एक आदमी को भेजकर माँ के मरने की खबर तक न देने वाला बाप उसे शरण देगा? इसकी आशा करना व्यर्थ था। हक के तौर पर भी वह शरण नहीं मांग सकती थी। वह पिता की अवहेलना करके घर त्याग कर एक आदमी के पीछे आई है, वह अब उसकी छोटी झोपड़ी में ही पड़ी पड़ी अपनी जिंदगी गुजार लेगी। उसे पंचमी की याद आई। आते समय उसने दीदिया दीदिया कहकर जो करुण पुकार की थी, वह अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह पंचमी माँ के दाह संस्कार के समय आशाहीन होकर रोती होगी। अब उसे घर में अकेले रहना होगा। समुद्र तट और भी तो परी होंगे। पलनी दूसरी तरफ मुंह किए चुपचाप बैठा था। उसके मन में भी शांति नहीं थी। अब तक वह सब तरह की चिंताओं से मुक्त रहा है। कहीं भी रहे, वहाँ उसे सुख ही सुख मालूम होता था। करुतम्मा उसके पास गई और कहा, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों? पलनी ने पूछा, वह मुसलमान यहाँ क्यों आया? करुतम्मा ने अपनी सच्ची स्थिति बतला देने के विचार से कहा, मेरा सर्वनाश करने के लिए, नहीं तो और किस लिए? करुतम्मा ने पलनी के सवाल का सामना किया। इतनी हिम्मत उसमें आ गई। पलनी भी सजग था। उसने पूछा, वह कौन है करुतम्मा? करुतम्मा उसके सवाल का अर्थ समझकर सब कुछ कह डालने के लिए तैयार होकर बैठ गई। कैसे कहना है, इसी में उसे संदेह था। कहीं से भी शुरू करे, अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। सब कुछ कह डालना है तो कहीं से भी शुरू करे, इसमें क्या हानि है? उसने कहा, हम दोनों बचपन से साथ ही साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। गौतम्मा ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की। बिना किसी क्षोभ या उत्तेजना के वह कहती गई। पलनी ध्यान से सुनता गया। पलनी का भाव देखकर गौतम्मा को डर भी लगा। थोड़ा सुनने के बाद उसने पूछा, क्या मेरी बातों का विश्वास नहीं होता? पलनी ने कहा कि वह विश्वास करता है। एक लड़की अपने पति से अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी, उसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। वह अपने को काले रंग में चित्रित कर रही थी ना? आगे चलकर करुतम्मा उस ढर्रे से कहानी सुनाने में असमर्थ हो गई। कहानी में वह गति नहीं रही। उसने अपने 18वें साल में प्रवेश करने तक की बातें सुनाई। पैसा कर्ज लेने के बारे में कुछ नहीं कहा। अंतिम विदा लेने के बारे में भी नहीं कहा। बाकी सब कुछ सुना डाला। उसे संदेह हुआ कि पलनी को ऐसा लगा होगा कि उसने कुछ छिपाया भी है। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, वह मेरा भाई है। उसे नहीं लगा कि पलई ने इसे मान लिया हो। सब सुन चुकने के बाद पलई ने कहा, तब तो लोगों का यह कहना कि उन लोगों ने तुम्हें निरकुन्नम तट पर से दूर कर दिया है, सच ही है ना? इसके उत्तर में गौतमा को एक ही बात कहनी थी कि वह इस तट के योग्य एक अच्छी पत्नी होकर अपना जीवन बिताएगी। भाग 15। गौतमा ने जो कुछ कहा था वह सब सत्य था। मान भी लिया जाए कि पलई ने सबका विश्वास कर लिया, फिर भी वह उसकी भावनाओं के लिए एक भारी आघात था। पलनी एक चिंताशील व्यक्ति था, वह उदास हो गया। क्या पप्पू से अब वह सीधा लड़ सकता है? गौतमा का चरित्र शुद्ध है, इसका उसे विश्वास था। लेकिन यदि पप्पू सामने आकर कहे कि वह गौतमा के योग्य नहीं है, तो वह उसका खंडन कैसे कर सकता है? गौतमा को वह उसके पिता के संरक्षण से हठपूर्वक लाया है, उसको छोड़ देने के लिए उसकी धर्मबुद्धि ने सम्मत नहीं दी। उसे छोड़ दें तो वह फिर कहाँ जाएगी? उसने सब बातें खोलकर कह दी है, इसका उसे विश्वास था। उसने अपनी गलतियों के लिए आंसू बहाते हुए बार बार प्रतिज्ञा भी की है, बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, वह अवश्य आगे सच्चरित्र होकर रहेगी, इसमें पलनी को संदेह नहीं था। लेकिन भावावेश के साथ उसको चूम लेना अब पलनी के लिए असंभव था। आलिंगन के समय उसके हाथ अब ढीले ही रह जाते। गौतमा दुगने आवेश में अश्रुपात के साथ क्या क्या बोल जाती थी। हाथ से वह निकल न जाए, इस डर से वह पति को कसकर पकड़ लेती थी। ऐसा लगता था कि उसके मन में हमेशा यह डर है कि पलनी कहीं हाथ से निकलकर बाहर न गिर जाए। मुझ पर विश्वास नहीं है? इसके सिवा मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? यह सवाल वह पूछ नहीं सकती थी। लगता था कि ऐसा सवाल करने का उसका अधिकार खत्म हो गया। पलनी ने जो कभी किसी से नहीं झगड़ता था, अब एक झगड़ा खड़ा कर दिया। एक बार पप्पू ने कुछ बातें सुनाई। पलनी गौतमा से सब सुन चुका था, फिर भी एक तीसरे व्यक्ति से सुनना वह सहन नहीं कर सकता था। दोनों में झगड़ा हो गया और पलनी ने उसे मार दिया। यह झगड़ा छोटा होकर नहीं रहा। पप्पू एक बड़े परिवार का अंग था। बात बढ़ गई कि पप्पू को मारने वाला पलनी होता कौन है। गौतमा के घर जाने का सवाल इस तरह खत्म हो गया। उन दिनों समुद्र में मछली भी नहीं मिलती थी। पलनी में कोई उत्साह नहीं था। गौतमा को भी क्या हिस्सा मिला है यह रोज पूछने की हिम्मत नहीं रही। क्या गौतमा को सजा धजा कर मड़ार साला मेला में नहीं ले जाएगा? क्या उस घर को एक खाना बनाने और एक सोने के लिए दो कमरों वाला नहीं बनाया जाएगा? नाव और जाल की बात को तो छोड़ ही देना है, वह बड़ी दूर की बात है। नाव और जाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर तो रोज का खर्च ही जुटाना मुश्किल हो गया। रोज के चावल का खर्च भी कभी कभी नहीं जुटता था। गौतमा को एक और कपड़ा और ब्लाउज चाहिए। पलनी की देह पर भी एक ही कपड़ा था।